कृष्ण तो उपस्थित सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। से भक्तों से आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूँ। जो भी कुछ आचार्यों की मुख से सुना हूँ, प्रभात की किताबों से पढ़ा हूँ, इस श्लोक से आधार पर हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। तो इसलिए प्रभुपाद जी आज इस तात्पर्य में बता रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति भगवान की थोड़ा सा भी सेवा करता है, वो सेवा कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। तो हमारे क्लास का टॉपिक ये रहेगा आज, अगर कोई व्यक्ति भगवान की थोड़ा सा भी सेवा करता है तो उसकी सेवा कैसे व्यर्थ नहीं जाता। भगवद्गीता में भगवान कृष्ण दूसरा अध्याय का 40 नंबर श्लोक में बताते हैं, नेहा विक्रम नाश्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो इस श्लोक के ऊपर प्रभुपाद जी ने 1972 में सैन फ्रांसिस्को में एक लेक्चर दिए है, उसमें मैं कुछ मुद्दा लाया हूँ। जय श्री श्री राधा गोविंद भगवान के। तो श्री प्रभुपाद जी उनकी नेहा विक्रम नाश्वस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। उस श्लोक के तात्पर्य में, उस श्लोक के लेक्चर में प्रभुपाद जी बता रहे, अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। उदाहरण देते हैं भरत महाराज का। भरत महाराज जब यूथ स्टेज में सब घर गृहस्थी छोड़ के भगवत प्राप्ति के लिए गए थे जंगल पे, परंतु एक हरिण के प्रति आसक्ति हुए तो अगला जन्म में उनको हरिण का शरीर मिला। उसके नेक्स्ट जन्म में जड़भरत के शरीर में भगवत प्राप्ति की। दूसरे उदाहरण देते हैं चित्रकेतु महाराज। चित्रकेतु महाराज जो कि उच्च कोटि का भक्त थे, पहले तक घर गृहस्थ में आसक्ति थे, जब उनको सत्संग मिला, नारद मुनि और अंगिरा ऋषि का संग प्राप्त हुआ और ये भक्त बने, पर भक्ति किए थे और आखिरी स्टेज में जब कैलाश लोक के ऊपर और निवास कैलाश लोक के ऊपर जब विमान में प्रवास कर रहे थे तभी पार्वती माता ने उनको श्राप देते हैं, आप क्या कर रहे हैं, एक वैष्णव को आदर करने का एटिकेट आपको मालूम नहीं, इसलिए आप एक असुर बन जाओ। तो वही चित्रकेतु महाराज अगला जन्म में बनते वृत्रासुर, पर उनकी भक्ति में कभी भी डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, भक्ति में कोई बाधा नहीं हुआ। नेक्स्ट जन्म में असुर योनि में भी भक्त बन के भगवत प्राप्ति किए। प्रभुपाद जी तीसरा उदाहरण देते हैं अजामिल का। अजामिल ब्राह्मण जो कि बचपन से सारे ब्राह्मणिकाल एक्ट में एक्सपर्ट था, परंतु जब उनको बीच में दैववश या उनकी भगवान के अरेंजमेंट में कुछ और क्या हुए, भक्ति से च्युत हो गए, परंतु क्योंकि वो प्रारंभ में भक्ति किए थे इसलिए वो क्या किए, उनके नेक्स्ट जीवन में भक्ति का मीन्स उनको फिर स्वीकृति प्राप्त हुआ और भगवत प्राप्ति किए। तो हम देखते हैं इतना शास्त्र में ऐसा कई उदाहरण आता है, कई उदाहरण है हमारे सामने। जो भी हम भक्ति करते हैं भक्ति का कभी भी विनाश नहीं होता है। श्री विश्वनाथ ठाकुर उनके एक कमेंट्री में बता रहे, जैसे ही जंगल में हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं तो जंगल में कई खतरा है, एक हिंस्र पशु पक्षी होते हैं, वाघ शेर हाथी वगैरह, पॉइजनियस स्नैक डेकोएट चोर, ये सब क्या कर सकते हमें लूट सकते हैं। तो जो बाकी मार्ग है सगाम कर्मी योगी ज्ञानी वो सब क्या करते हैं, जंगल में ट्रैवलिंग करना जैसा, और वो अकेले ट्रैवलिंग करते हैं, उनके जीवन में खतरा है। पर भक्त भी उसी जंगल में, भक्तों के लिए कहा जाता है कि जैसे कि भक्तों को जाना है कि राजा के सैन्यों के साथ उसकी ट्रैवलिंग करना, तो राजा के जब सैन्य होते हैं भले कितने सारे हिंस पॉइजनियस स्नैक क्यों ना हो, हिंस्र प्राणी क्यों ना हो, अगर सैन्य राजा के सैन्य साथ में है तो आक्रमण का सवाल ही नहीं है, ये भक्ति मार्ग है। तो भक्ति कैसे किया जाता है, उसके लिए भगवान कृष्ण स्वयं भागवतम का 11वां स्कंद का 27 नंबर अध्याय में भगवान कृष्ण स्वयं बता रहे, बोले कि भक्ति आप कैसे कर सकते हैं। तो भगवान बोलते हैं 11वां स्कंद में, वो बोलते हैं कि आप मेरे पूरा अध्याय है, कैसे भगवान कैसे मेरा सेवा कर सकते हो आप लोग। तो उनमें से एक श्लोक आता है, भगवान बोलते हैं कि शैली दारुमयी लोही लेप्या लेख्य च सही कटी मनोमयी मणिमयी प्रतिष्ठा में विध स्मृता। भगवान बोलते कि मेरा विग्रह की स्थापना करो। द डेटी फॉर्म ऑफ द लॉर्ड इज सेड टू अपीयर इन 8 वेराइटीज। 8 प्रकार की मेरे विग्रह बना सकते हो आप लोग। कौन सा स्टोन पत्थर से आप मेरे विग्रह बना सकते हो, वुड लकड़ी से, मेटल से अलग अलग प्रकार की जो तांबा वगैरह आता है, अर्थ मिट्टी से, पेंट से, सैंड रेती से, बाद में द माइंड और ज्वेल्स मन से, और अलग अलग सब जो कॉस्टली ज्वेलरी से। तो इस प्रकार की मेरा विग्रह बना के आप मेरे सेवा कर सकते हो, ये भगवान कृष्ण स्वयं बता रहे। तो इसलिए जो हम देखते हैं दो प्रकार की विधि होता है, एक है पंचरात्रि की विधि, दूसरा है भागवत विधि। हमारे कृष्ण भावनामृत संस्था में हम दोनों विधि को अपनाते हैं। पंचरात्रि यानी कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान स्वयं ब्रह्मा जी को एक ज्ञान दिए थे, और वो ब्रह्मा जी का ज्ञान जब मधु कौटव राक्षस ने चुरा के ले लिया, तभी वही ज्ञान को शिवजी ने नारद मुनि को 5 रात में वो सारे ज्ञान दिया था, इसलिए उसको पंचरात्रि की विधि कहा जाता है। और हम लोग वही विधि जो अपना रहे, और साथ साथ भागवत विधि दोनों हम लोग अपना रहे। तो भागवत का जो 11वें स्कंद में डिटेल्स पढ़ सकते आप लोग, कैसे जो भगवान की सेवा किया जा सकता है। भगवान बोलते हैं कि पहले आप स्नान करेंगे, स्वच्छ होंगे, फिर शुद्ध वस्त्र परिधान करके मेरे सेवा में आप लोग जोड़ सकते हो। और इसके अलावा श्री सनातन गोस्वामी हरिभक्ति विलास एक ग्रंथ है, जिसपे और डिटेल्स बताते हैं कैसे आप मेरे सेवा कर सकते हो, और जिन जो भी सेवाएं कर रहे हो उसका परिणाम क्या, आपको क्या लाभ मिलने वाला है, इसके बारे में वो चर्चा करते हैं। तो सनातन गोस्वामी जो कि अलग अलग पुराण से, स्कंद पुराण, ब्रह्म विवर्त पुराण, पद्म पुराण, नरसिंह पुराण, मत्स्य पुराण, कुर्म पुराण इत्यादि से वो सारे कोट करते हैं। तो हम लोग अभी थोड़ी देर के लिए चर्चा करेंगे, जो भी हम लोग सेवाएं करते हैं उसका लाभ क्या होता है। जैसे कि सनातन गोस्वामी बता रहे, अगर कोई व्यक्ति भगवान की अभिषेक करता है, विग्रह स्थापना के पश्चात अगर कोई अभिषेक करता है तो उसका क्या फल मिलता है। वो बोलते हैं कि शरीर दुख शमनम, मनो दुख विनाशनम, खीरेण स्नापनम विष्णु, खीरम दि प्राप्तम तथा। शरीर दुख शमनम, कोई व्यक्ति अगर भगवान की श्रीमूर्ति को दूध से नहलाते हैं तो उसका सारे शारीरिक पीड़ा निकल जाता है। मनो दुख विनाशनम, मन की जितने सारे बीमारियां है वो भी सब दूर चले जाता है। फिर बाद में खीरेण स्नापनम विष्णु, खीरम दि प्राप्तम तथा, और उसको मृत्यु के पश्चात खीर सागर में निवास करने का एक सुनहरा अवसर प्राप्त होता है। और ये बताया गया है, अगर कोई व्यक्ति भगवान के विग्रह को दूध से, दही से, घी से, अलग अलग प्रकार के फल के रस से अगर स्नान करता है तो सारे विश्व भर के लोग उसको पसंद करते हैं। अगर कोई व्यक्ति भगवान की श्रीमूर्ति को घी से स्नान करता है तो उसको हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। आगे बताया गया है, अगर कोई व्यक्ति भगवान को अभिषेक करते समय वो कलश में, जल का कलश में अगर कुशग्रास डालता है तो उसको भगवान विष्णु के लोक प्राप्त होता है। ये बताया गया है, अगर कोई व्यक्ति भगवान की अभिषेक हो रहा है उस समय अगर मृदंग, करताल, अलग अलग प्रकार के जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा के कीर्तन कर रहा है तो उसको दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता है।
अरे बोल,
ये भी सनातन गोस्वामी आगे बताते हैं, अगर कोई व्यक्ति भगवान की अभिषेक के समय विष्णु सहस्त्र नाम, जैसे कि शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभ सुरेशम विश्वम धारम गगन सदृशम मेघावरण शिवांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम जगीवृदनागम्य वंदे विष्णु भवैहरम सर्वलोक एकनाथम इत्यादि श्लोकों का अगर उच्चारण करते हैं तो सनातन गोस्वामी आगे बोलते हैं, उसको अगर इत्यादि उस श्लोकों का अगर पुनरावृत्ति करते हैं तो जीवन में सारे वेद शास्त्र का नॉलेज उसको प्राप्त हो जाता है। क्योंकि भगवत संतुष्ट करने के लिए वो क्या करते हैं, भगवान की स्तोत्र गाते हैं। इसलिए आप लोग देखे होंगे जब हमारे राधा गोविंद जी का अभिषेक होता है अलग अलग फेस्टिवल में, कुछ देवटी ब्रह्म संहिता गाते हैं, जो उसकी फल है। ये बताया गया है, भगवान का अभिषेक हो गया, अभिषेक के पश्चात अगर कोई भगवान की श्रीमूर्ति को कपड़ा से पोछता है तो उसको जन्म से अभी तक जितने सारे जन्म का पाप है वो सारे पाप धो के नष्ट हो जाता है। आगे बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान को वस्त्र दान करता है तो इसका फल है वो कपड़ा में जितना धागा है वो सारे धागा, जितना धागा मान लो 500 धागा है कपड़ा में, तो 500 मिलियंस उनकी जो एंसेस्टर्स है, जो उनके जो पूर्वज है सबका उद्धार होता है। हरिभक्ति विलास में ये कोट करते हैं। फिर आगे बोलते हैं, अगर कोई व्यक्ति भगवान को रंग बिरंगी कपड़ा दान करता है तो इसका फल मिलता है कि उसका सौभाग्य का उदय होता है, बिकम फॉर्च्यून इन दिस मेटल वर्ल्ड। आगे अगर भगवान का अभिषेक हो गया, वस्त्र हम लोग ने परिधान कर दिए, फिर भगवान को ज्वेलरी लगाते हैं, उसका फल क्या है? सनातन गोस्वामी पाद बताते हैं, अगर कोई भगवान को ये रिंग कानफूल बोलते हैं अगर कोई लगाते हैं तो उसको सारे वेद शास्त्र को समझने का शक्ति मिलता है। आगे बताते हैं, अगर कोई भगवान को मुकुट दान करता या पहनाते हैं तो ही बिकम फॉरमोस्ट पर्सनालिटी इन दिस वर्ल्ड, दुनिया में सर्वोच्च व्यक्ति बनते हैं। फिर अगर कोई व्यक्ति श्री मूर्ति का वेस्ट बैंड, अगर कमर पट्टी भगवान को पहनाते हैं या डोनेशन देते हैं तो उनको मिलता है, उनको ये फल मिलता है कि ही कैन रूल द एंटायर अर्थ, ये पूरे पृथ्वी लोक का राज्य करने का उसको एक अवसर प्राप्त होता है। इसलिए पहले के जमाने में राजा महाराज सब विग्रहों को दान देते थे, हम लोग सुनते हैं। आजकल ऐसे नेता नहीं लेता, नवेंद्र महाराज बोलते हैं। फिर आगे अगर कोई भगवान को नेकलेस देता है, हार दान करता है तो उसको मिलता है कि गेन द नॉलेज ऑफ स्क्रिप्चर, सारे वैदिक शास्त्र ज्ञान प्राप्त होता है। फिर बाद में अगर कोई भगवान को नुपुर, ये जो बेंजल्स दान करता है तो सारे पाप भगवान के चरण में आके नष्ट हो जाते हैं, वो व्यक्ति जिंदगी भर जितना पाप किया है सारे पाप भगवान के चरण में आके उसी सारे पाप नष्ट हो जाता है। यही अगर कोई व्यक्ति भगवान को एंकल बेल्स पेंजन दान किया तो उसको फल मिलता है, या कोई पेंजन पहना है तो उसका भी फल मिलता है। फिर आगे बढ़ना आता है, भगवान का अभी अभिषेक के बाद वस्त्र परिधान हो गया, ज्वेलरी, ज्वेलरी के बाद हम लोग सेंट मारते हैं भगवान को, गंध। तो गंध का बेनिफिट इसे बताया गया कि जो भगवान को सेंट यूज करते हैं वो विशेष करके चंदन का या जस्मिन का या तुलसी का होना चाहिए। अगर हम लोग सैंडलवुड पॉप भगवान के शरीर में लगाते हैं तो हमारे सारे के सारे व्याधि दूर हो जाता है, सनातन गोस्वामी पाद हरिभक्ति विलास में वर्णन करते हैं। फिर आगे बोलते हैं, हम भगवान जो धूप अर्पण करते हैं वो धूप मिक्स विथ अगरू सैंडलवुड पॉप घी फ्रेग्रेंट ऑयल, सुगंधित तेल चंदन इत्यादि से बनना चाहिए, और कोई डेड एनिमल डेड लिविंग एंटिटी का आश नहीं होना चाहिए। फिर अगर कोई व्यक्ति भगवान को धूप अर्पण करता है तो इसका फल क्या है, शास्त्र में बताया गया है कि पहले मूर्ति के पश्चात वो वायु लोक जाएगा, उधर वो सारे सारे फैसिलिटी का एंजॉय करेगा, फिर उधर से वो विष्णु लोक जाएगा। और यही बताया गया, अगर कोई व्यक्ति भगवान की धूप में आरती कर रहा है तो वो धूप का सुगंध या जो स्मोक धुआं जहां तक जाता है वो सारे लोग उधार हो जाते हैं, इसलिए गोविंद धाम बोलते हैं, तीर्थ स्थान कहा जाता है। फिर आगे बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति भगवान की आरती के समय दर्शन लेता है और उसके नाक में अगरबत्ती का सुगंध जाता है तो उसको सारे तीर्थ स्थान में स्नान करने का फल मिलता है। इसलिए भक्त लोग क्या करते हैं, आरती के समय मंदिर खचाखच भरा हुआ रहता है, लोग इवन कर्मी लोग भी जो डिवोटी नहीं है वो जो बाहर से आते हैं खिचड़ी खाते हैं या ऐसे टाइम पास करते हैं, जब आरती के समय पूरा इनोसेंटली प्रेयरफुल मोड में आगे खड़े होते हैं। उसका पीछे का साइंस ये है, अगर हम भगवान की आरती के समय दर्शन लेते हैं और वो सुगंध हमारे नाक में जाता है तो हमें सारे तीर्थ स्थान का फल मिलता है, साथ साथ हमारे हृदय में जो अनंत जन्म का अनर्थ भरा हुआ है वो सब जल के राख हो जाता है। ये सनातन गोस्वामी स्कंद पुराण से श्लोक कोट करके बता रहे हैं। फिर बाद में भगवान की धूप के बाद हम लोग दीप अर्पण करते हैं, दीप का फल ये बताया गया कि दीप किस प्रकार की होना चाहिए, शास्त्र में बताया गया कि ऑड नंबर होना चाहिए, इवन नंबर नहीं होना चाहिए, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9 इस प्रकार होना चाहिए, 2, 4, 6, 8 ये सब नहीं होना चाहिए। फिर बताया गया कि वो जो धूप है सॉरी दीप है वो एक परफ्यूम ऑयल होना चाहिए या काऊ का घी होना चाहिए या सेसमा ऑयल या कुसुम ऑयल, ऐसे सुगंधित तेल या घी में होना चाहिए, और जो एनिमल चर्बी है वो सब यूज नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति भगवान को दीप दान करता है, भगवान की आरती करता है दीप में, तो उसको ये फल मिलता है वो सारे अज्ञान अंधकार से उसकी जीवन निकल जाता है। ये बताया गया कि ब्रिलियंट एज ए 1000 सन, उसका तेज 1000 सूर्य जैसा प्रकाशित होने लगता है। आगे बताया गया कि not fall in darkness as you shwet deep or vaikuntha. वो इस फिर से अज्ञान अंधकार से नहीं आता है, उसको श्वेत दीप या वैकुंठ प्राप्त होता है। आगे बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति कार्तिक महीना में भगवान को दीप माला का दान करता है तो उसको ये प्राप्त होता है कि देवी देवता उसकी गुणगान करते हैं, उसकी कीर्ति गाते हैं और वो सारे पूर्वजों को लेके वैकुंठ जाने का रास्ता उसको दिखता है। जय। फिर आगे बताया गया अगर कोई व्यक्ति भगवान को दीप के बाद, हम लोग जनरली मैं बता दिया पहले से ही वस्त्र का और जल का, फिर आगे बढ़ना आता है भगवान को अगर कोई व्यक्ति पुष्प ऑफरिंग करते हैं तो पुष्प किस प्रकार से होना चाहिए। वो जो फूल है नॉट इटन बाय इंसेक्ट, कोई कीड़े मकोड़ा नहीं खाना चाहिए, इतना हमें केयर करना है। और अगर कोई व्यक्ति फूल भगवान को दान करता है तो उसके जीवन का सारे दुख मिट जाता है और उसको दूसरी कुछ प्रायश्चित करने का जरूरत नहीं रहता है। और ये बताया गया अगर कोई व्यक्ति भगवान को पुष्प ऑफरिंग कर रहा है तो उसका जीवन का जो प्रॉवर्टी है, जो गरीबी है, वो सब हट जाता है। आगे बताया गया है कि उसका जो अगर कोई व्यक्ति पुष्प ऑफरिंग करता है भगवान को तो उसको धन संपत्ति, सुंदर स्वास्थ्य, सारे ज्ञान प्राप्ति होता है। इनमें और एक विशेष मुद्दा सनातन गोस्वामी कोट कर रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति अपने ही गार्डन से फूल ला के भगवान को ऑफरिंग करते हैं तो उसको ये लाभ होता है, ही क्वालिफाइड टू लिव हार्मोनी विथ नेचर, वो प्रकृति के साथ हार्मोनी को क्या बोलेंगे हिंदी में, प्रकृति के साथ, प्रकृति उसको सपोर्ट करता है कि सुंदर एक ये सत्वगुण जीवन जीने के लिए। दुर्भाग्यवश आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, भगवान को फूल, हम इतना फूल हो गए कि भगवान को फूल ऑफरिंग करना ही भूल गए और इसी कारण समाज में देखते हैं सुनामी, हरिकेन, अर्थक्वेक, सैंड फ्लू आया है, बीच में आया था, बाद में भी COVID-19, फ्यूचर में और भी कुछ डिसीज आ सकता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो सहज जीवन जीना है उसको छोड़ के विकृत जीवन जी रहे हैं, तो इसलिए हमें इस चीज़ें को लाइफ में अपनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान को फैनिंग करता है तो उसको यमराज की दर्शन नहीं होता है और साथ साथ भगवान क्या करते हैं, वो जब भगवान के धाम को जाता है सारे उनकी जो पार्षदों के साथ इस भक्त का सेवा करते हैं, भगवान सेवा में लगाते हैं और खुद सेवा करते हैं। अगर कोई व्यक्ति भगवान को फैनिंग करता है, वो फैनिंग चार प्रकार की होना चाहिए, पहला है कि कपड़ा का हो सकता है, ताल का पत्तों का होना चाहिए, मोर पंख का या यक जो गाय का पूछ का होना चाहिए, ये बताया गया है। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति भगवान को नैवेद्य अलग अलग प्रकार की राइस, सब्जियां, स्वीट वगैरह वगैरह बना के भोग दिखाता है तो उसके जितने सारे पूर्वज है ब्रह्मा जी का, सनातन गोस्वामी कोट करते हैं, ब्रह्मा जी का 100 कल्प तक उसके सारे पूर्वजों को अपुलेंट प्रसाद मिलता है। तो देखिए आचार्य का योगदान है, हमारे पास इतना समय नहीं कि पद्म पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्म विवर्त पुराण, अलग अलग शास्त्र पढ़े, पर आचार्य क्या कर रहे, नाना शास्त्र विचार नैक निपुणम सद्धर्म संस्थापक लोकानाम हित कारण त्रिभुवन मनो शरणांग करो, हमारे हित करने के लिए आचार्य लोगों ने सारे कोट करके हमें दिए है। तो इसलिए हमें हमेशा प्रभुपाद को कृतज्ञता रहना चाहिए, प्रभुपाद ने इतना सुंदर दिव्य प्रोसेस हमें दिया है, जो कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसके पीछे का विज्ञान, उसके पीछे का जो बेनिफिट हमें मालूम नहीं, फिर भी हम लग रहे हैं और हमें फायदा मिलता ही है। इसलिए नवयोगेंद्र जब निमि महाराज को मिलते हैं वो बोलते हैं कि भगवत का 11वां में श्लोक आता है, उसे बोलता है कि यन मास्ताय नृणम राजन न अवमाने करिचित धावन उन्मिलितम नेत्रे न पतेत न स्कले निह। ये भक्ति मार्ग इतना अच्छा है, इतना आसान है, कोई व्यक्ति आंख बंद करके भागता है तो भी उसका चांस नहीं गिरने का और लॉस होने का सवाल ही नहीं है, ये भक्ति मार्ग है। तो अभी प्रश्न है ये है, अभी 10-15 मिनट के लिए हम चर्चा करेंगे, भक्ति मार्ग इतना आसान है तो हमें क्यों कॉम्प्लिकेटेड जा रहा है? हम माला उठाया तो दुनिया भर का विचार आता है, लगता है कि अरे बहुत बड़ा बोझा है मेरे सर के ऊपर, 16 माला मराठी में बोलते ना, माला करते करते गोला आ जाता है पेट में। तो भक्ति क्यों हमें कॉम्प्लिकेटेड जा रहा है? सही में भक्ति मार्ग कॉम्प्लिकेटेड है कि हम कॉम्प्लिकेटेड है, उसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। तो उसकी पहले मैं बताता हूँ, ये जो हम सारे जो ये करते हैं, जो मैं बताया जो अलग अलग प्रोसेस, भगवान कैसे 100% इसके साथ रेसिप्रोकेशन करते हैं, क्योंकि भगवान की रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु का 21वां चैप्टर में लिखते हैं, भगवान की 64 क्वालिटीज है, जैसे कि बताता हूँ, ये भक्ति रसामृत सिंधु का 21वां अध्याय है, आप में से जो पढ़ना है पढ़ सकते हैं। तो उसे बताता कि भगवान कृष्ण की 64 गुण क्या क्या है। पहला कि संपूर्ण शरीर का सुंदर स्वरूप, समस्त शुभ गुणों से अंकित, अति रुचिर, तेजवान, बलवान, नित्य युवा, अद्भुत भाषा विषाद, सत्यवादी, मधुरभाषी, ऐसे 64 गुण है कृष्ण में। तो 64 में एक गुण है कृतज्ञता, ग्रेटफुलनेस इंग्लिश में बोलेंगे। तो विश्वनाथ जोगी ठाकुर उसका एग्जाम्पल देते हैं, भगवान रामचंद्र को जाम्बवान ने मदद किया था, पर जाम्बवान को मालूम नहीं था मैंने मदद किया था, इसलिए भगवान से तो युद्ध किया नेक्स्ट ईयर में जब कृष्ण द्वारिका लीला में थे। पर कृष्ण को याद था नहीं, ये भक्त मेरा सेवा किया था, कृतज्ञ। तो इसलिए कृष्ण क्या करते हैं, उसके बेटे के साथ विवाह करते हैं। वो बोलते कि मैं जाम्बवान का सेवा तो उस समय नहीं कर पाया, परंतु इस समय करता हूँ, ये भगवान की कृतज्ञता का लक्षण। दूसरे उदाहरण देते हैं चक्रपात, जैसे कि द्रौपदी। द्रौपदी के बारे क्या क्या था, जब वो इंद्रप्रस्थ में रह रहे थे सारे पांडव, उस समय कृष्ण क्या करते हैं, गए थे और कृष्ण फ्रूट काट रहे थे, कुछ पपिया वगैरह, कुछ आचार्य बोलते पपिया, कुछ आचार्य बोलते दूसरे कुछ फ्रूट। तो उस समय कृष्ण का हाथ को थोड़ा सा लग गया और द्रौपदी देख रहे थे, इमीडिएटली द्रौपदी क्या किया, अपना साड़ी का थोड़ा सा पार्ट फाड़ के कृष्ण को दे दिए। कृष्ण का सेवा किया था द्रौपदी, इसलिए द्रौपदी जब विषम परिस्थिति में थे, भगवान कृष्ण ने उनको पूरा साड़ी का ढीगे दे दिया, है क्या नहीं। ये भगवान की ग्रेटफुलनेस, कृतज्ञता, कोई अगर मदद करते तो भगवान कभी भूलते नहीं है। तो ये भगवान की गुण, इसलिए हम जो भी सेवाएं कर रहे भले हम भूल जाएंगे कब मंदिर आए थे, कब थोड़े बहुत सेवा किए थे, पर भगवान नहीं भूलेंगे, इसलिए वो भगवान है और हम लोग कंडीशन से बोले। तो अभी हमारे लिए कुछ लेसन्स है, अफकोर्स मैं योग्य व्यक्ति नहीं हूँ, किसको उपदेश दो, सारे वरिष्ठ वैष्णव जो सुना हूँ पढ़ा हूँ वही शेयर करेगा मेरा शुद्धिकरण के लिए, साथ साथ एज ए सेवा के रूप में। तो हम लोग जो सेवा करते हैं, हमारे प्रगति करने के लिए इन इन चीज़ों को हमें अपनाना पड़ेगा, जिसके द्वारा हम लोग रैपिडली प्रोग्रेस कर सकते भक्ति में। तो चलो, विश्वनाथ जोगी ठाकुर माधुर्य कादंबरी किताब लिखे, उस पर लिखते हैं भक्त दो प्रकार के होते हैं, एक है रागानुराग स्तर का भक्त, दूसरा है साधना स्तर का भक्त। रागानुराग स्तर यानी कि उनका हमेशा भगवान के साथ मैत्री प्रेमपूर्ण संबंध, प्रेमपूर्ण सेवा होता चलता ही रहता है। इसके लिए कोट करते हैं, नामान हरि नामानु कीर्तन। रागानुराग स्तर का भक्त के बारे में उदाहरण देते हैं, नाम ग्रहणम वैकुंठ अरहणम द्व एव सोपानम। तो रागानुराग स्तर का भक्तान के उदाहरण दे सकता मैं, सनातन गोस्वामी और रागानुराग स्तर का भक्त थे, जो भगवान कृष्ण उनको बोले कि, मदन मोहन जी बोले कि, अरे सनातन मुझे आप ये बाटी खिला रहे उसके साथ थोड़ा नमक दिया करो। तो इसमें सनातन बोलते हैं कि बिल्कुल नमक नहीं मांगने का, आज नमक मांग रहे कल स्वीट मांगेंगे, मैं तो एक सन्यासी हूँ कहाँ से बुलाऊ। ये है रागानुराग स्तर का भक्त, जो कि भगवान के साथ बातचीत करते हैं। दूसरे उदाहरण दे सकता पुरुषोत्तम चौबे, जब भगवान कृष्ण को, मदन मोहन जी को पुरुषोत्तम चौबे भोग लगाते थे और मदन मोहन जी नहीं खाते थे, तभी चौबे क्या करते थे कि दंडा लेते थे, कृष्ण को छड़ी दिखाते थे, कृष्ण पूरा खत्म करो नहीं तो आपको मार पड़ेगा। तो ये है रागानुराग स्तर का भक्त। पर हम जैसे साधना स्तर भक्त, ये जो रागानुराग स्तर का भक्त है उनके लिए दो सोपान है, वो हमेशा ये दो स्थिति में रहते हैं और भगवान के साथ सेवा करते हैं। कौन सा बताए, जैसे मैं वैकुंठ नाम ग्रहणम वैकुंठ आरोहणम दो एवं सोपानम, दो स्टेप केवल है जो कि भगवान साथ रहते हैं। दूसरा है हम जो साधक स्तर है, हमारे लिए 9 स्टेप है हम उस स्तर को पहुंचने के लिए। कौन सा पहला तो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निभूति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, यह है 9 स्तर। तो हमें ये 9 स्तर को क्रश करने के लिए हमारी जिंदगी चले जाते हैं। अगर ये 9 स्तर को हम आसानी से 8 स्तर को आसानी से पार करेंगे तभी हमें वो रागानुराग स्तर का भक्ति मिलेगा। तो पहला कि अथो श्रद्धा, श्रद्धा के लिए जीव गोस्वामी दो प्रकार की श्रद्धा बताते हैं। वो बोलते हैं कि श्रद्धा दो प्रकार होते हैं, एक है लौकिक श्रद्धा, दूसरा है तात्विक श्रद्धा। लौकिक श्रद्धा यानी कि हम लोग भक्ति करते हैं, पर लौकिक श्रद्धा यानी कि व्यक्ति जब भक्ति में क्रियाएं देखता है, अच्छा कीर्तन चल रहा है, नाम जप हो रहे, भक्त लोग फेस्ट मना रहे, सेवा कर रहे, तो ये जो ऊपर का आनंद देखे वो आ जाते हैं। पर सेवा करता है और सेवा करते समय वो भक्त को लगता है कि लोग मुझे भी एनकरेज करें, अप्रिशिएट करें, लोग मुझे ही सराहना करें, मुझे ही प्रोत्साहन करें। तो ये जो भक्त होते हैं अगर वो तात्विक श्रद्धा तक नहीं आएंगे तो क्या करेंगे, ज्यादा नहीं टिक पाएंगे, वो भक्ति से दूर चले जाते हैं। और तात्विक श्रद्धा की वो क्या कहते हैं, शास्त्रार्थ विश्वास, उनको डीपली नॉलेज होता है शास्त्र के बारे में, और जो अनुरागी भक्त होते हैं उनके साथ उनका दृढ़ संबंध होता है। तो महाप्रभु सनातन गोस्वामी बोलते हैं भक्त तीन प्रकार के होते हैं। एक है श्रद्धावान जन हो भक्तिर अधिकारी, कनिष्ठ मध्यम उत्तम श्रद्धा अनुसारी, जहार कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन क्रमे क्रमे से भक्त हो उत्तम। जो तीन प्रकार के भक्त होते हैं, तीन प्रकार के श्रद्धालु होते हैं, पहला की कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी का जो श्रद्धा है वो कोमल होता है, उसके उपरांत मध्यम अधिकारी होते हैं। मध्यम अधिकारी के बारे में सनातन गोस्वामी श्री महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बता रहे शास्त्र युक्ति सुनिपुण दृढ़ श्रद्धावान मध्यम अधिकारी से महाभाग्यवान। वो जो मध्यम अधिकारी भक्त होते हैं उनमें शास्त्र का डीप नॉलेज होता है, पर वो कभी कभी दूसरे को डिफीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, पर अपने भक्ति में कभी भी वो बाधा नहीं, अपने जो श्रद्धा में कभी भी वो बाधा आने नहीं देंगे। और तीसरा होता है श्रद्धालु, वो उत्तम अधिकारी, जो कि दूसरे का खुद भक्ति में टिके रहेंगे, खुद का श्रद्धा में डाइवर्ट होने नहीं देंगे, साथ साथ दूसरे का भी हृदय परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिए आचार्य बोलते हैं जो कनिष्ठ अधिकारी है उसको हमेशा मध्यम अधिकारी के संग में रहना चाहिए। मान लो दो कनिष्ठ अधिकारी है तो प्रगति नहीं कर पाएंगे, भक्त बताते हैं। और कोई कनिष्ठ अधिकारी है वो सोचता है यार मेरा जप्पा अच्छा से नहीं हो रहा है, ये लोग इतना सारे काम पे लगाते हैं सेवा के नाम पे, चलो मैं निकल जाते आश्रम से, तो दूसरा भक्त बोलेगा यार मेरे साथ भी ऐसे ही चल रहा है, चलो हम दोनों निकल जाएंगे। तो कनिष्ठ अधिकारी के स्तर पर रहने के कारण वो भक्ति से चले जाते हैं। इसलिए कनिष्ठ अधिकारी को मध्यम अधिकारी के स्तर पर आना चाहिए, और मध्यम अधिकारी के संग में रहना चाहिए, और मध्यम को उत्तम अधिकारी के संग में रहना चाहिए जिसके द्वारा उसकी प्रगति होगा। और उत्तम को वो क्या करेगा, उत्तम अधिकारी के स्तर पर रहकर वो रस आस्वादन करते भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का। तो ये है श्रद्धावान जन। फिर श्रद्धा के बाद आता है साधु संग। तो जो साधु संग होता है वो भी दो प्रकार के होते हैं, एक है अंतरंगी साधु संग, दूसरा है बहिरंगी साधु संग। जिसे कि हम लोग सुनते हैं अंतरंग साधु संग, यानी कि जिसे परीक्षित महाराज ने जब उनको पता चला कि मुझे श्याप मिला है तो क्या करते हैं, इमीडिएटली गंगा के तट पे जाते हैं, बाद में सुखदेव गोस्वामी का संग करते हैं और उनका जीवन का सारे दुख समझाते हैं और बोलते हैं कि अभी केवल आप ही मेरा सहारा है, मुझे कथा सुनाइए। और इंटीमेटली वो क्या किए, अंतरंग साधु संग किए सुखदेव गोस्वामी का। या दूसरा सुनते हम लोग जब फोर्थ कैंटो में चतुष कुमार को पृथु महाराज मिलते हैं, पृथ्वी महाराज बोलता है कि हम तो घर गृहस्थ में फंसे हुए हैं और आपके संग से हमारा जीवन सफल होगा। या जब विदुर को मैत्र मुनि बोलते हैं मिलते हैं तो विदुर बोलता है कि प्रसिद्ध श्लोक है, हाँ, जनस्य कृष्णात विमुखस्य दैवात अधर्मशीलस्य सुदुखितस्य अनुग्रहाय चरन्ति न्यूनम भूतानि भवानि जनार्दनस्य। वो बोलते हैं कि जनस्य कृष्णात विमुखस्य दैवात, वो लोग क्या कहे, कृष्ण से विमुख हो गए हैं कर्मी लोग, अभक्त लोग, या जो घर गृहस्थ में फंसे हुए लोग। जनस्य कृष्णात विमुखस्य दैवात अधर्मशीलस्य सुदुखितस्य, अधर्म का आश्रय लिए और दुखीमय जीवन जी रहे। परंतु आप लोग जो महात्मा लोग घूमते हो, आपका दूसरे कुछ कार्य नहीं है, एक में वो कार्य है वो क्या है, अनुग्रहाय चरन्ति न्यूनम, आप लोग विचरण करते हैं, आपका एक में वो कार्य है। भूतानि भवानि जनार्दनस्य, भगवान जनार्दन लोगों को देना है आपको, इसलिए आप क्या करें, आप घूम रहे। तो देखिए ये है अंतरंग साधु संग का उदाहरण। क्या हम लोग चौथा उदाहरण ले सकते हैं अंतरंग साधु संग का उदाहरण, जैसे कि 11वें स्कंद में जब नवयोगेंद्र निमि महाराज को मिलते हैं, निमि महाराज बोलते हैं कि गृह आसक्ति गृह चेतिसाम, मैं घर गृहस्थ में फंसा हुआ था परंतु आपने आके मुझे एनलाइट किया, जीवन का दिशा दिखाया। तो ये होता है अंतरंग साधु संग का उदाहरण। दूसरी होता है बहिरंग साधु संग का उदाहरण, जैसे कि हम लोग सुनते हैं माधवेंद्रपुरी का दो शिष्य थे, एक है ईश्वरपुरी, दूसरा रामचंद्रपुरी। रामचंद्रपुरी गुरु के पास ही रहता था परंतु करता क्या था, दोष दर्शन, गुरु को ही बोलता था ब्रह्म के ऊपर निर्विशेष निराकार ब्रह्म के ऊपर आप ध्यान करो। इसलिए साधु संघ दो प्रकार होते हैं, एक है अंतरंग साधु संघ, दूसरा है बहिरंग साधु संघ। ये हमारे स्तर पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। एक होते हैं अंतरंग साधु संघ, यानी कि हम्बल रहेंगे, जो भी सेवा विलाव करेंगे, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, सेवा करने के लिए कुछ चीजें सीखने के लिए प्रयास करेंगे। और बहिरंग साधु संघ यानी कि आनुष्ठानिक वृत्ति, अरे अगर मैं सेवा नहीं करेगा तो मंदिर से निकाल देंगे मुझे, या प्रभु जी मुझे पूछेंगे क्यों नहीं आप आए सेवा करने के लिए। तो ये है बहिरंग साधु संघ का उदाहरण। तो ये है साधु संघ। साधु संघ के बारे में और चर्चा करते जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं, हाँ, साधु संघ के बारे में जीव गोस्वामी पाद और कोट करते हैं, वो बोलते हैं कि साधु संघ यानी कि पहला साधु संघ होता है कि आदो साधु संघ तदर्थ विश्वास, साधु जो बोल रहे उसके बारे में हमारे श्रद्धा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। दूसरे साधु संघ है गुरु पदाश्रय दीक्षा सेवा, वो बोलते कि भजन रीति शिक्षा, भजन रीति शिक्षा निबंधनम सदाचार शिक्षा। तो पहला साधु संघ है कि शास्त्रों की अध्ययन करना, और दूसरे साधु संघ ये है हमें भजन के रीति जो भजन की सब तरीका है, वैष्णव सदाचार है, सेवा के जो नियम है डू एंड डोंट्स, जो कि क्या बोलते अनुकूल अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम, ये सारी चीजें सीखना, उसको वास्तव में साधु संघ बोलते हैं। और उसके बाद वो साधु ऑब्जर्व करके क्या करते हैं, दीक्षा देते हैं। दीक्षा यानी कि साधु का गुरुबा होता है एक्चुअली, इनिशिएशन बोलते हैं। तो दीक्षा तीन स्टेज से होता है, दीक्षा यानी कि तीन स्टेज उसके अंदर आ जाता है, तीन स्टेज। पहला कि गुरु पदाश्रय दीक्षा सेवा, और कोई व्यक्ति दीक्षा लिया है तो उनमें तीन क्वालिटी होना चाहिए। विश्वनाथ ठाकुर का कोर्ट में आपको शेयर करता हूँ, वो बोलते हैं कि गुरु पदाश्रय दीक्षा, दीक्षा ये तीन चीजें में पूरी होता है। गुरु पदाश्रय यानी कि जीवन में गुरु का स्वीकार करना, बाद में दीक्षा मीन्स वो जो मन जो भाव लिए है उसको कंटिन्यू करना, तीसरा की सेवा, वो गुरु की सेवा में हम कितना अड़िग है, कितना दृढ़ है, वो हमें दिखाता है कि हम कितना डेडिकेटेड है। फिर उसे बोलते हैं कि विश्राम भेण गुरु सेवा, एक गुरु नहीं है, कई गुरु होते हैं, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, मार्गदर्शक गुरु। तो विश्राम भेण यानी कि इंटीमेसी, और इंटीमेटली खाली नॉट खुद का इनिशिएटिव गुरु की, बल्कि सारे गुरु की सेवा करना, उसको बोलते हैं वास्तव में गुरु सेवा। चक्रवर्तीपाद बोलते हैं, ये सुंदर उनकी टिप्पणी लिखते हैं, वो बोलते हैं कि सुतान हित्वेति सुतान हित्वेति पतिव्रता इति गृह सेवायाम प्रवृत्त शिष्य श्रवण कीर्तन भी भजनम तत् प्रेमानंद भी त्यजेत। तो चक्रवर्तीपाद बोलते हैं एक व्यक्ति, एक दीक्षित शिष्य का लक्षण क्या होना चाहिए, जैसे कि एक पतिव्रता नारी अपने स्तन से बच्चा को दूध पिला रहा है, जब उनकी पति आते हैं भूखा तो क्या करते हैं, वो बच्चा को भी गोद से बाहर रखते हैं, जाके उनको खाना परोसते हैं। ऐसे एक डेडिकेटेड डिसाइपल का, एक जो समर्पित शिष्य का ये लक्षण होना चाहिए, मेरे गुरु करने, मेरे गुरु का संतुष्ट करने के लिए इवन मेरा श्रवण कीर्तन, जितने सारे सेवा, जितने सारे मुझे जो आनंद मिलने वाला चीजें, सब त्याग के मैं केवल मेरे गुरु की सेवा में जाऊं। यह एक समर्पित शिष्य का लक्षण, यह होता है जो अंतरंग शिष्य का लक्षण, यह वास्तव में साधु संघ है। इसलिए सनातन गोस्वामी को महाप्रभु बोलते हैं कि गुरु पदाश्रय दीक्षा गुरु र सेवन सद्धर्म पुरुष साधु मार्गानुगमन, यह है साधु संघ। साधु संघ के बाद तीसरा स्टेज आता है भजन क्रिया। भजन क्रिया में दो प्रकार होते हैं, एक है अनिश्चितता भजन भजन क्रिया, दूसरा है निष्ठा भजन क्रिया, भजन क्रिया। तो हम लोग जो भजन क्रिया अभी दो प्रकार की चर्चा करेंगे, अनिश्चितता भजन क्रिया पांच भाग में डिवाइड किया गया है। पहला है कि उच्चामयी, दूसरा है घन तरल, तीसरा है व्यूढ़ विकल्प, चौथा है विशेष संगम, पांचवा है नियम अक्षम, छठवा है तरंग रंगिनी। पहला कि उच्चामयी, उसके लिए विश्वनाथ चौधरी ठाकुर कोट कर रहे हैं, कोई छोटा बच्चा जब स्कूल जाता है तो पहले माता पिता क्या करते हैं, उसके हाथ में खड़ू बोलेंगे, उसको चेक पीस वगैरह देते हैं, बोलते हैं कि लिखो ए बी सी डी ओ आ एक दो, तो बच्चा क्या करते हैं हाथ पकड़ के सिखाते हैं, और बच्चा को उस दिन फील होता है कि मैं बहुत बड़ा स्कॉलर बनने वाला हूँ ये हो। तो या आमतौर से हम लोग चर्चा कर सकते, कोई अगर व्यक्ति हाथ में माला लेता है तो क्या बोलता है, जब उत्साहमय का लक्षण क्या क्या होता है मैं बताता हूँ। वो दो चार दिन जब करेगा वो बोलेगा प्रभु मेरा तो काम क्रोध लोभ सब चला गया है, खाली मच्छर बचा हुआ है, वो भी दो दिन के अंदर जाएगा। तो ये बोलते हैं उच्चामयी, ऐसा भजन क्या कहते हैं ज्यादा नहीं टिकता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति को इस उच्चामयी अनर्थ से नीचे आना है तो इसलिए उसको भक्ति का संग बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्ति के संग में रहेगा तो ही वो भक्ति में प्रगति कर पाएगा। इसलिए चौधरी पाद कोट करते हैं, चौधरी पाद बोलते हैं कि भक्ति मोह प्रवहताम त्वयि मे प्रसंगो भूयात अनंत महता ममला शयनम येन अंजसा उलुवनम उरु व्यसनम भवाब्दि न्यस्य भवत गुण कथा अमृत पान मत्तः। बोलते कि जितने सारे बड़े बड़े भक्त हैं, जीवन में उनको भगवान मिल जाता है, जैसे ध्रुव महाराज, उनके जीवन में स्वयं भगवान उनके सामने प्रकट हुए थे, फिर भी वो क्या मांगे, भक्ति मोह प्रवहताम त्वयि मे प्रसंगो भूयात अनंत महता ममला शयनम, हे भगवान मुझे ओ अमला सयानम, जिनके हृदय में मल नहीं है, जो मनुष्य लोग आपकी भजन में लगे हुए, उनकी संग दीजिए। देखिए भगवान को बड़ा ऐश्वर्य नहीं मांगा, भगवान फिर भी जबरदस्ती दिए, उनका इच्छा नहीं था फिर भी वो स्वीकार किए। तो भक्ति मोह, यानी कि जहां भक्ति का प्रभाव हो रहा है और वो अमलाशय लोग जहां आपकी भजन में लिप्त है, मुझे उनकी संग दीजिए। ये नंजसा उलुवनम उरु व्यसनम भवाब्दि नेस्य भवत गुण कथा अमृत पान मत। अच्छा, मैं भक्ति की संग में जाएगा तो करेगा क्या? आपकी जो अमृतमय कथा है, नाम रूप गुण लीलाएं है, उनमें से मैं मत्त होने वाला हूँ। आपके साथ में रहा तो इतना आनंद नहीं आएगा जितना भक्ति की संग में आना चाहिए, आना आएगा। इसलिए भक्त क्या करते हैं, भक्ति की संग मांगते हैं। तो ये है उष्चामयी, उष्चामयी अनर्थ से हमें परे रहना है, दूर जाना है, तो हमें भक्ति की संग इम्पोर्टेंट है। दूसरा है घन तरल। घन तरल यानी कि हमारे भक्ति में कभी लगता है कि अरे हम लोग को सिंसियरली भक्ति करना चाहिए, दूसरे समय लगता है अरे यार कुछ प्रगति नहीं हो रहा है, छोड़ दो। उदाहरण के लिए व्यक्ति क्या करते हैं, मंगल आरती में देखते हैं तुलसी आरती में गायब, फिर बाद में देखेंगे जपा में, फिर भागवत में कहाँ चले जाएंगे, उनको ढूंढना पड़ेगा। तो कब देखते, कभी नहीं देखते, एपियर डिसअपियर, उसको घन तरल स्थिति बोलते हैं। वो भक्त भी प्रगति नहीं कर पाएंगे, उनको प्रगति करना है तो उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि वो जो श्रद्धालु भक्त है, निष्ठावान है, उनके संग में रहना है और दृढ़ता से चीजें को अपनाना है, भक्ति में चीजें को। तीसरा लक्षण बताते हैं जो भजन क्रिया में अनिश्चितता, भजन क्रिया का बाधा का तीसरा कि व्यूढ़ विकल्प। व्यूढ़ विकल्प मान के वो क्या करेगा, संकल्प विकल्प। चॉकलेट बाद उदाहरण देते हैं, व्यक्ति कभी कभी सोचेगा भजन करना है ना, बहुत इम्पोर्ट, भजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें जाके वृंदावन जगन्नाथपुरी सब तीर्थ स्थान में रहना चाहिए। फिर बाद में सोचेगा अरे यार जाके मतलब क्या है, क्योंकि वो प्रभु जी गए थे फिर वापस आ गए, तो क्या है वो, उनकी भजन में दृढ़ नहीं है, उसको व्यूढ़ विकल्प बोलते हैं। तो इसलिए हमें संकल्प पूर्वक कुछ चीजों को अपनाना है, इसके ऊपर हम लोग बात कर सकते हैं। चौथा लक्षण बता रहे कि विषय संगम। विषय संगमान की भोग वृत्ति में लग जाता है जब जीव, तभी क्या होता है वो भक्ति में प्रगति नहीं कर पाता है। तो आचार्य बोलते हैं भगवान तप में मिलते हैं, भोग में नहीं मिलते हैं। इसलिए ना हमें देखते हैं स्वर्ग गोस्वामी पाद, वो क्या थे, त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलपति श्रेणी सदा तुच्छवत भूत्वा हार विहार कादि किंचित। मीन्स वो जंगल में, वृंदावन के जंगल में इतने सारे धन सम्पत्ति सब छोड़ छाड़ के एक पेड़ के नीचे एक दिन रहते थे, और करते थे क्या, इसके लिए कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि अष्टप्रहर नाम कीर्तन भागवत श्रवण। हाँ, मीन्स वो कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि कैसे वो एक एक पेड़ के नीचे रहते थे और अष्टप्रहर यानी कि कभी कभी 24 आवर नाम जप करते थे और खाना पीना सोना भूल के। इसलिए हमें आचार्य जी सिखाते हैं कि अगर भगवत प्राप्ति है चाहते हो, आप भगवान जीवन में चाहते हो, तो भोग में मत लगो। कृष्ण गीता में बोलते हैं कि भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानम त्वया अपहृत चेतसा व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधि न विधीयते। अगर आप भोग ऐश्वर्य में लगा हुए हो तो समाधि न विधीयते, समाधि प्राप्त नहीं होगा, भगवत प्राप्ति नहीं होगा। इसलिए कि साधक को हमेशा प्रयास करना चाहिए, मैं भोग में लगा हूं या सेवा में लगा हूं। महाराज जी कोट कर रहे थे, हम लोग जब भोग में लगते हैं तभी हमारे जो सुकृति नष्ट होता है, और हम लोग अगर तपस्या नहीं करते, भजन नहीं करते हैं, तो हमारे सुकृति नहीं बढ़ता, इसलिए हम लोग भक्ति से दूर चले जाते हैं। ये हर किसी के लिए, मैंने गृहस्थ आश्रम के लिए या ब्रह्मचर्य आश्रम करने के लिए, इसलिए व्यक्ति हमेशा अपने आप को परखना चाहिए, मैं अभी भोग में लगा हूं या मेरे जो गुरु की सेवा करने के लिए लगा हूँ, साधना स्ट्रांगली कर रहा हूँ, हियरिंग चैंटिंग सेवा स्ट्रांगली कर रहा हूँ, उसके बारे में कंटेम्पलेट करना चाहिए। यह है विषय संगम। फिर आगे आता है नियम अक्षम। तो विषय संगम मान के जब इंद्र तृप्ति का संग मिल जाता है तब व्यक्ति को उस पर लिप्त नहीं होना चाहिए। और दूसरा है कि नियम अक्षम। तो नियम अक्षम मान के कुछ भाव ले लेते हम लोग, फिर बाद में वो फुलफिल नहीं कर पाते, उसको बोलते कि नियम अक्षम। इसलिए आचार्य बोलते हैं अगर हमें नियम अक्षम अनर्थ से परे जाना है तो नियम पूर्वक हमें जो भक्तिमय कार्य को अपना है उसको गंभीरता से नियम पूर्वक करना चाहिए। आचार्य कोट करते हैं जैसे कि रघुनाथ दास गोस्वामी थे, सहस्र दंडवत करे लय लक्ष्य नाम 2000 वैष्णवेर नित्य परिणाम। तो बोलते कि जो रघुनाथ दास गोस्वामी थे वो क्या करते हैं, सहस्र दंडवत करे लय लक्ष्य नाम, वो क्या करते हैं विग्रहों को 1000 दंडवत करते थे एक दिन में, बाद में लय लक्ष्य नाम डेली 100,000 नेम चैंटिंग करते थे, फिर बाद में 2000 वैष्णव नित्य परिणाम। उनका नियम ही था डेली 2000 वैष्णव का दंडवत करना। तो ऑफकोर्स हम उनको इमिटेट नहीं कर सकते, पर हमें ऐसा कुछ नियम अपनाना है, जैसे कि हमारे इवन ब्रह्मचर्य आश्रम में कुछ ब्रह्मचर्य में ऑब्जर्व कर रहा हूं, वो सोने की पहले भागवत चैतन्य भागवत का एक अध्याय पढ़ेंगे ही, या भागवत पढ़ेंगे या एक श्लोका रिसाइटेशन करेंगे, कुछ तो प्रभुपाद का कोट पढ़ेंगे। हरधर महाराज के लेक्चर में बता रहे थे, मॉस्को में प्रभुपाद का एक शिष्य है, उनका ये जब इसे प्रभुपाद को मिले, महाराज बता रहे थे, वो जो प्रभु जी खुद महाराज को बता रहे थे, प्रभुपाद को जब मिले वो क्या करते थे, हमेशा प्लेट लेके भागते थे प्रसाद आ गया तो। फिर बाद में प्रभुपाद उनको बोले कि हमें जैसे दिन बढ़ता है भक्ति में वैष्णव क्वालिटी बढ़ना चाहिए, पहले अमान ही ना मान देना, दूसरे को एक मौका देना चाहिए सेवा करने का, और पहले दूसरे को मौका देना चाहिए, बाद में हमें वो आनंद लेना चाहिए। तो महाराज बता रहे थे मॉस्को में आज भी प्रभुपाद को डिसाइपल है, हमेशा सारे भक्त का प्रसाद के बाद ही प्रसाद लेते हैं और हमेशा प्रसाद सर्विंग करते हैं सारे भक्तों को। ऐसा ना कुछ नियम रहना चाहिए हमारे जीवन में भी, देन हम प्रगति कर सकते। हम देखते हैं आचार्य के जीवन में सनातन गोस्वामी पाद, उनका ये डेली का नियम था गोवर्धन गिरी गोवर्धन जी का हमेशा प्रदक्षिणा करना हर दिन, पहले तो 42 किलोमीटर का था, अभी तो 22 किलोमीटर खाली है। और भगवान वो जो बूढ़े हो गए चल नहीं पा रहे थे, फिर भी वो दंडा लेके प्रदक्षिणा कर रहे थे, तो भगवान भक्तवश चलो होते हैं, भगवान को दुख लगता है, भगवान प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि अरे सनातन आप अभी बूढ़े हो गए, आपका प्रदक्षिणा बंद करो। तो इस समय भगवान को बोलते नहीं प्रभु मेरा ये व्रत है। तो इस समय भगवान क्या करते हैं, एक गोवर्धन शिला के ऊपर अपना चरण रखते हैं और एक जो दंडा रखते हैं, वो जो काठी था भगवान की, आज भी वो गोवर्धन शिला हमें राधा दामोदर मंदिर में देखने को मिलते हैं। तो यही आचार्यों का नियम था भक्ति का। तीसरा है तरंग रंगिनी। तरंग रंगिनी यानी कि हम जिसे भक्ति करते हैं, जो वो स्वयं बोलते हैं कि भक्ति स्वनुभावेन अयम सर्वे अपि जनाः अनुरज्यन्ते, सारे लोग आपके आसपास में घूमेंगे, आपको सारे उनके दुख बताएंगे, आपसे वो सलाह लेंगे। आगे बोलते हैं कि लाभ पूजा आदि शु पूजा प्रतिष्ठा आदि शु, और आपको ये लाभ पूजा प्रतिष्ठा ये सब मिलेगा, इसलिए ये भक्ति का उपफल है। जैसे हम लोग कुछ चीजें खरीदी करते हैं तो उसकी उसके ऊपर कुछ चीजें फ्री आता है। तरंग रंगिनी, तरंग यानी कि वेब्स, रंगीन यानी कि उधर घूमना। तो भक्ति यानी कि एक डीप ओशियन में हमें मिलने वाला कॉस्टली चीजें जैसा, और ये जो मान सम्मान पूजा लाभ प्रतिष्ठा ये सब ऊपर ऊपर से आने वाला चीज है, इसलिए बाय प्रोडक्ट है भक्ति का। इसलिए आचार्य बोलते हैं कि हाँ ये न अर्चित हरिस्तेन तत्रापि तानि जगन्ति अपि रजन्ति जन्तवस्तत्र जंगमं स्थावरम अपि। अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करते हैं तो शेर और हरिण जैसे कि स्वाभाविक बैर भावों का प्राणी भी उसके पास घूमते हैं। इसलिए पहले के जमाने में साधुओं के आश्रम में क्या होता था, जब जो हिंस्र प्राणी भी निवास करते थे, या आचार्य दूसरे बोलते हैं, इसलिए हमें भक्ति का जो उपफल है उसके प्रति अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। वो कोट करते हैं अभिमान सुरापान, अगर कोई व्यक्ति अभिमानी है तो सुरापान जैसा है। दूसरा है गौरव रौरव ध्रुवम, अगर कोई व्यक्ति गौरव मिल रहा है उसको ले रहा है तो उसको 100% रौरव नरक मिलने वाला है। तीसरा बोलते कि प्रतिष्ठा शुकर विष्ठा, अगर कोई व्यक्ति प्रतिष्ठा मिल रहा है उसको ले रहे जीवन में तो शुकर का विष्ठा जैसा है। इसलिए त्रय त्यजत हरि भजत बोलते, इसलिए हमें तीनों को छोड़ के भगवान हरि का भजन करना चाहिए। फिर आय का स्टेज है अनर्थ निवृत्ति निष्ठा, अनर्थ भी चार प्रकार होता है, सुकृति उत्थित दुष्कृति उत्थित भक्ति उत्थित और चौथा है कि अपराध। तो कई स्टेज है तो आप लोग पढ़ भी सकते हो। थैंक यू। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गौर प्रेमानंदे।